एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की गहराई में उतरने वाले हैं जो पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है, बल्कि कहूं तो अंदर तक हिला देता है। यह है पुर्तगाली लेखक जोजे सारामैगो का कालजयी उपन्यास ब्लाइंडनेस। मूल शीर्षक है एनसायो सोब्रे आ सेगेइरा, मतलब अंधता पर एक निबंध। सारामैगो, हाँ, 1922 से 2010 तक पुर्तगाल के अकेले साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता। उन्हें 1998 में यह सम्मान मिला था। और दिलचस्प बात यह है कि वो काफी साधारण पृष्ठभूमि से थे, खुद ही पढ़े लिखे, और उनकी रचनाओं में उनकी नास्तिकता और वो जो सामाजिक न्याय की चिंता है वो साफ दिखती है। उनकी लिखने की शैली भी मतलब कमाल की है। बहुत लंबे बहते हुए वाक्य, अल्प विराम का खूब इस्तेमाल, और संवाद लिखने का तो बिल्कुल ही अलग ढंग है। वो पारंपरिक निशान वगैरह नहीं होते, साथ ही वो अक्सर रूपक का सहारा लेते हैं, एलेगरी जिसे कहते हैं।
हाँ, एलेगरी मतलब पात्र और घटनाएं किसी गहरे विचार का प्रतीक बन जाते हैं।
बिल्कुल। और ये ब्लाइंडनेस, ये 1995 में छपा डिस्टोपियन साहित्य का एक बहुत अहम काम माना जाता है, मतलब ऐसी कहानियां जो भविष्य के किसी बुरे समाज की तस्वीर दिखाती हैं, है ना? अक्सर आज के लिए कोई चेतावनी।
और इसने काफी हलचल मचाई थी, प्रशंसा भी हुई, विवाद भी, क्योंकि ये सभ्यता की परतें उधेड़ती है, इंसान के स्वभाव पर बड़े असहज सवाल खड़े करती है।
तो आज हम इसी कहानी के भूल भुलैया में उतरेंगे, किरदारों के सफर को देखेंगे और इसके गहरे संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे।
कहानी की शुरुआत तो ऐसी है, रोंगटे खड़े हो जाएं। एक बिल्कुल आम सा दिन, एक अनजान शहर, एक आदमी ट्रैफिक लाइट पर अपनी कार में है, इंतजार कर रहा है, और एकदम से सब कुछ सफेद, बस सफेद। वो अंधा हो गया।
अंधा, लेकिन अंधेरा नहीं।
नहीं, अंधेरा नहीं, एक चकाचौंध करने वाली दूधिया सफेदी, जैसे किसी किसी दूध के समंदर में डूब गया हो।
इसे ही किताब में सफेद बीमारी कहा गया है, ऐसी सफेदी जो मानो सब मिटा देना चाहती हो।
में फैलती है नजर मिलते ही, वो पहला अंधा आदमी, फिर उसका आंखों का डॉक्टर, फिर क्लिनिक में इंतजार कर रहे बाकी लोग, एक के बाद एक, जैसे कोई अनदेखी आग फैल रही हो शहर में, एकदम दहशत।
और सरकार, सरकार ने क्या किया?
सरकार की प्रतिक्रिया वो भी दहशत और बदहमासी वाली। कोई इलाज ढूंढने के बजाय पहला कदम था इन बीमारों को समाज से अलग कर देना। उन्हें पकड़ा गया और शहर के बाहर एक पुराने वीरान से पागलखाने में, हाँ, असाइलम में जबरदस्ती बंद कर दिया।
बंद कर दिया बस ऐसे ही?
हाँ, और बाहर फौज का पहरा, हुक्म कि कोई भागे तो गोली मार दो। यहीं से वो सवाल उठता है ना कि क्या मुश्किल वक्त में समाज का यही चेहरा होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय उसे छुपा देना, नजरों से दूर कर देना।
और इसी माहौल में सारामैगो एक और चीज करते हैं जो बड़ी अनोखी है, किरदारों के नाम नहीं है।
हाँ, नाम नहीं है, बस पहचान है। डॉक्टर की पत्नी, पहला अंधा आदमी, गहरे चश्मे वाली लड़की, है ना, तिरछी नजर वाला लड़का, काली पट्टी वाला बूढ़ा आदमी।
बिल्कुल, मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मुझे भी अजीब लगा था ये, पर फिर लगा कि इसके पीछे कोई गहरा मतलब होगा, ये किरदारों को शायद ज्यादा सार्वभौमिक बना देता है।
हाँ बिल्कुल, ये उन्हें किसी एक इंसान से बड़ा, शायद पूरी इंसानियत का आईना बना देता है, और ये दिखाता है कि कैसे संकट में हमारी बाहरी पहचाने, नाम, काम, ओहदा सब बेकार हो जाते हैं, हम सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरतों और रिश्तों तक सिमट जाते हैं। और कहानी का फोकस है इन्हीं शुरुआती लोगों का एक छोटा सा गुट, जो इत्तेफाक से उस पागलखाने में एक साथ फंस जाते हैं, और इन सब में एक किरदार है जो कहानी की, कह सकते हैं, धुरी बन जाती है, डॉक्टर की पत्नी।
डॉक्टर की पत्नी, हाँ।
उसकी कहानी तो मतलब गजब की है। पता नहीं कैसे वो सफेद बीमारी से बची रहती है, वो देख सकती है, लेकिन अपने अंधे पति का साथ देने के लिए वो अंधा होने का नाटक करती है, और उसके साथ ही उस कैदखाने में चली जाती है।
सोचकर ही अजीब लगता है, अकेली देखने वाली उस अंधेपन के समंदर में।
हाँ, जरा सोचिए उसकी हालत, उस पूरे अंधों की दुनिया में वो अकेली देखने वाली आंख है। वो चाहती नहीं, पर हालात उसे अपने छोटे से समूह का रक्षक बना देते हैं, उनका सहारा, उनकी उम्मीद। लेकिन ये देखना, ये एक वरदान से ज्यादा श्राप जैसा लगता है। उसे इंसानियत को गिरते हुए देखना पड़ता है, हैवानियत को पनपते हुए, गंदगी, बेबसी, सब अपनी आंखों से।
क्या बोझ होगा उस पर?
बहुत ज्यादा। वो एक साधारण सी घरेलू महिला थी, और अब उसे एक नेता बनना पड़ता है, एक रक्षक, और अंत में हालात उसे हत्या करने तक पर मजबूर कर देते हैं। उसकी पूरी यात्रा ये दिखाती है कि करुणा को जिंदा रखने के लिए भी कभी कभी कितनी कितनी कठोरता जरूरी हो जाती है।
और वो पागलखाना, वो तो जैसे उस गिरते हुए समाज का एक छोटा सा मॉडल, एक माइक्रोकॉस्म बन जाता है, एक लैब जहां इंसानी फितरत का टेस्ट हो रहा है। शुरू में कुछ कोशिशें भी होती हैं ना व्यवस्था बनाने की?
होती हैं, डॉक्टर सबको इकट्ठा करता है, कुछ नियम बनाने की बात होती है, सफाई का ध्यान रखना, खाने का इंतजाम, आपस में बातचीत, लेकिन ये कोशिशें ये ज्यादा टिकती नहीं।
क्यों, क्या होता है फिर?
क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जाते हैं, रोज नए अंधे लाए जा रहे हैं, जगह कम पड़ रही है, खाना पानी ना काफी है, और सफाई सफाई तो जैसे लोग भूल ही गए हों, हर तरफ गंदगी, मलमूत्र, सड़न, लोगों की पहचान मिट रही है, शर्म लिहाज खत्म हो रहा है।
यहीं पर वो सभ्यता की पतली परत उतरती दिखती है।
बिल्कुल, जैसे देखने की पहचानने की बुनियादी शक्ति गई, व्यवस्था चरमराने लगी और जंगलीपन वो हावी होने लगा। और इसी माहौल में पनपते हैं कहानी के विलन, दूसरे वार्ड के कुछ गुंडे। उनका लीडर जन्म से अंधा है और उसके पास एक बंदूक है। वो लोग मौका परस्ती और वहशीपन का प्रतीक बन जाते हैं।
बंदूक?
ओहो,
फिर तो स्थिति और बिगड़ी होगी।
और फिर आता है कहानी का सबसे काला, सबसे भयानक दौर। ये गुंडे खाने के बंटवारे पर कब्जा कर लेते हैं, बंदूक के जोर पर एक नई वहशी हुकूमत। उनकी मांगे, पहले तो लोगों से उनका बचा खुचा कीमती सामान छीनते हैं, और जब वो खत्म हो जाता है तो वो सबसे गिरी हुई मांग करते हैं, खाने के बदले औरतें।
हे भगवान,
सारा मैगो इसे बिना किसी झिझक के दिखाते हैं। औरतों के साथ लगातार बेरहमी से बलात्कार होता है, और डॉक्टर की पत्नी, उफ, उसका बोझ तो कल्पना से भी परे है। उसे ये सब देखना पड़ रहा है, और उसे ही अपने वार्ड की भूखी बेबस औरतों को उन दरिंदों तक ले जाना पड़ता है। ये नैतिकता के पूरी तरह ढह जाने का वो पॉइंट है जहां से वापसी नामुमकिन लगती है।
लेकिन लेकिन क्या कोई विरोध नहीं करता?
यो, इसी अंधेरी खाई में एक चिंगारी सुलगती है, डॉक्टर की पत्नी। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो अपनी कैची उठाती है और उस गुंडों के सरदार की गर्दन में घोंप देती है। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये इंसानियत की बची खुची इज्जत को बचाने की एक हताश मगर जरूरी हिंसक कोशिश है।
बाप रे, ये तो बहुत ही हिंसक मोड़ है।
हाँ, और शक्ति का ऐसा नंगा नाच, और ऐसे में प्रतिरोध कैसे पनपता है? डॉक्टर की पत्नी का ये कदम जैसे एक बांध तोड़ देता है। इसके बाद उस कैदखाने में पूरी अफरा तफरी मच जाती है। एक पीड़ित औरत हिम्मत करके गुंडों के वार्ड में आग लगा देती है।
आग?
हाँ, आग फैलती है, पूरे पागलखाने को चपेट में ले लेती है। और इसी भगदड़ में उन्हें पता चलता है कि बाहर पहरा दे रहे सैनिक जा चुके हैं, शायद वो भी अंधे हो गए। दरवाजे खुले हैं, आजादी, हाँ, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जो उस पागलखाने से भी ज्यादा अंधी और वहशी हो चुकी है।
बाहर की दुनिया, उसका क्या हाल है?
पागलखाने के बाहर की दुनिया तो जैसे किसी कयामत का मंजर है। पूरी सभ्यता जैसे जैसे भाप बन गई है। शहर एक खुली गटर बन चुका है। सड़कें कूड़े, लाशों, इंसानी गंदगी से पटी पड़ी हैं। अंधे लोगों के झुंड जानवरों की तरह खाने की तलाश में भटक रहे हैं। कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं। ये सर्वनाश का, एपोकलिप्स का इतना सच्चा, इतना भयानक चित्रण है, पढ़ते हुए सिहरन होती है।
और ऐसे में वो छोटा सा समूह कैसे बचेगा? डॉक्टर की पत्नी?
हाँ, यहाँ डॉक्टर की पत्नी की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। वो अकेली है जो देख सकती है, वही अपने छोटे से समूह को रास्ता दिखाती है, उन्हें किसी तरह जिंदा रखती है। लूटे पिटे सड़ते हुए सुपरमार्केट से जैसे तैसे खाने का जुगाड़ करती है। उसकी आंखें ही उनके बचने की एकमात्र गारंटी हैं। ये हिस्सा हमें दिखाता है कि जब सभ्यता की वो पतली सी परत हटती है तो इंसान अपनी कितनी कितनी आदिम अवस्था में लौट सकता है।
क्या उन्हें कहीं कोई ठिकाना मिलता है, कोई सुरक्षित जगह?
आखिरकार हाँ, भटकते भटकते ये छोटा सा समूह डॉक्टर के पुराने अपार्टमेंट में पहुंचता है। बाहर के गंदगी और तबाही के मुकाबले ये जगह एक पनाहगाह जैसी लगती है, साफ सुथरी, महफूज। और यहीं उस नरक के बीच इंसानियत के दोबारा पनपने के कुछ पल आते हैं।
जैसे कि?
जैसे बारिश में सबका एक साथ नहाना। ये सिर्फ जिस्म की सफाई नहीं, ये आत्मा की धुलाई जैसा है, खोई हुई इज्जत को वापस पाने जैसा, एक तरह का बपतिस्मा।
वो साथ खाते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक अजीब सा परिवार बन जाता है उनका, जिससे एक भयानक हादसे ने जोड़ा है। इंसानियत के धागे धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं।
तो क्या अंधेरा छंटता है?
और फिर कहानी एक और मोड़ लेती है। जैसे अचानक ये बीमारी आई थी, वैसे ही अचानक जाने भी लगती है। एक दिन डॉक्टर की पत्नी सबको कुछ पढ़कर सुना रही है, तभी वो पहला अंधा आदमी, वो चीखता है, मैं देख सकता हूँ।
सच में?
हाँ। और फिर धीरे धीरे एक एक करके शहर के बाकी लोगों की आंखें भी खुलने लगती हैं।
तो अंत अच्छा होता है?
उपन्यास का अंत भी उतना ही सोचने पर मजबूर करने वाला है। डॉक्टर की पत्नी अपने घर की बालकनी में खड़ी है, नीचे शहर अब साफ दिख रहा है, सफेद, और उसके जहन में एक आखिरी डरावना सा ख्याल आता है। मुझे नहीं लगता कि हम अंधे हुए थे, मुझे लगता है कि हम अंधे हैं, अंधे जो देख सकते हैं पर देखते नहीं।
उफ, क्या लाइन है, अंधे जो देख सकते हैं पर देखते नहीं। ये तो पूरे उपन्यास का सार है, है ना?
बिल्कुल, यहीं से वो नैतिक अंधेपन बनाम शारीरिक अंधेपन का सवाल उठता है। सारामेगो शायद यही कह रहे हैं कि ये सफेद बीमारी तो बस एक बहाना थी, असली अंधापन तो हम में पहले से ही था। दूसरों के दुख, अन्याय, नाइंसाफी को देखकर भी अनदेखा करने की हमारी आदत।
हाँ, शारीरिक अंधापन ने तो बस उस पर्दे को बेरहमी से हटा दिया, जैसे हम आंखें होते हुए भी अंधे बने रहते हैं।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है वो गवाह होने का बोझ जो डॉक्टर की पत्नी उठाती है। जिसे दिखाई देता है, जो जानता है, उसकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। क्या हम जो देख सकते हैं, मतलब जिनके पास जानकारी है, साधन है, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उनके प्रति जो नहीं देख पाते या देखना नहीं चाहते?
ये सवाल तो पाठक को भी कचोटता है। और शक्ति का खेल, कैसे मुसीबत के वक्त ताकत का संतुलन बदलता है, कैसे जरा सी ताकत हाथ में आते ही लोग भेग सकते हैं, वो गुंडों का गिरोह भयानक उदाहरण है।
हाँ, लेकिन साथ ही प्रतिरोध भी पनपता है, शुरू में दबे छुपे, फिर डॉक्टर की पत्नी के उस हिंसक कदम के रूप में। ये दिखाता है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने के कई तरीके हो सकते हैं, और कभी कभी चुप्पी तोड़ना जरूरी हो जाता है, चाहे कीमत कुछ भी हो।
और वो मानवीय गरिमा का सवाल, जब लोगों से उनके नाम छीन लिए जाते हैं, उनकी सफाई, उनकी निष्ठा छीन ली जाती है, तो वो कैसे धीरे धीरे अमानवीय होने लगते हैं।
हाँ, अमानवीकरण। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसी गंदगी और गिरावट के बीच सफाई का एक छोटा सा काम, एक दूसरे को सहारा देना, खाना बांटना, ये सब जैसे उस अमानवीकरण के खिलाफ गहरे मानवीय प्रतिरोध बन जाते हैं। ये छोटे छोटे काम ही गरिमा को बचाए रखते हैं।
हाँ, और इसी से जुड़ा वह समुदाय और अकेलेपन का द्वंद्व। पुराने रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन जरूरत और साझा दुख की बुनियाद पर नए रिश्ते बनते हैं, जैसे डॉक्टर की पत्नी का वो समूह। पर साथ ही एक गहरा अकेलापन भी है, क्योंकि कोई किसी को ठीक से समझ नहीं पा रहा।
हाँ, वो बूढ़ा आदमी कहता भी है, मुश्किल बात दूसरों के साथ रहना नहीं, उन्हें समझना है। शायद यही असली त्रासदी है ना, समझने की ये नाकामी।
सारामेगो की शैली भी इन सब बातों को महसूस करने में बहुत मदद करती है। वो लंबे लंबे वाक्य, कोमा का इतना इस्तेमाल, डायलॉग लिखने का वो खास तरीका, ये सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बनाते हैं। पढ़ते हुए कभी घुटन होती है, कभी लगता है जैसे हम सब किरदारों के दिमाग में एक साथ घुस गए हैं।
हाँ, और वो कथावाचक जो सब कुछ जानता है पर अपनी राय भी देता चलता है, वो कहानी को सिर्फ घटना नहीं रहने देता, एक सोच विचार का सफर बना देता है।
और प्रतीक, जैसे वो सफेद अंधापन सिर्फ रोशनी का ना होना नहीं, बल्कि पहचान, अर्थ, सब कुछ मिटा देने वाली सफेदी। वो पागलखाना जो असफल समाज का प्रतीक है, जो मुश्किलों को हल करने के बजाय छुपाता है।
डॉक्टर की पत्नी की आंखें जो चेतना, याददाश्त, जिम्मेदारी का बोझ है। और वो कुत्ता, हाँ, आंसुओं का कुत्ता कहा गया है उसे, जो बिना शर्त उनके साथ रहता है, वो जैसे इंसानियत से परे एक निश्चल वफादारी और करुणा का प्रतीक बन जाता है।
इस किताब को पढ़ना कोई आसान सफर नहीं है, ये मन को बहुत बेचैन करती है, परेशान करती है। पाठक भी जैसे डॉक्टर की पत्नी के साथ उस नरक का गवाह बन जाता है, एक डर, एक चिंता लगातार बनी रहती है।
हाँ, और इसका असर देर तक रहता है, ये हमें अपनी दुनिया, अपने समाज की स्थिरता पर शक करने को मजबूर करती है। हम सोचने लगते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, हमारा नैतिक बल कितना टिकेगा, ये खुद से सामना करने जैसा है।
लेकिन क्या इसमें कोई उम्मीद है? या सिर्फ निराशा ही निराशा है?
नहीं, इस गहरी निराशा के बीच भी उम्मीद की एक महीन सी डोर है। वो डोर है डॉक्टर की पत्नी के समूह का साथ, उनकी आपसी देखभाल, दया के वो छोटे छोटे पल।
अच्छा।
हाँ, ये दिखाते हैं कि भयानक से भयानक हालात में भी इंसान की अच्छाई, उसकी करुणा पूरी तरह मरती नहीं है। तो सबक दोहरा है, एक तरफ ये चेतावनी कि हमारी सभ्यता कितनी नाजुक है,
और दूसरी तरफ इंसान की हिम्मत और मोहब्बत का सबूत जो अंधेरे में भी रास्ता खोज लेती है। ये देखने के मायने ही बदल देती है।
बिल्कुल, देखना सिर्फ आंखों का काम नहीं, ये समझने, परवाह करने और याद रखने का एक नैतिक चुनाव है।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी तथाकथित सभ्यता कितनी नाजुक है,
और सच्ची दृष्टि केवल आंखों से नहीं बल्कि मानवीय करुणा, समझ और एक दूसरे की गरिमा को पहचानने से आती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।